देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्कार। गीता के चैप्टर 18 की चर्चा हम कर रहे थे। पिछले बार हमने श्री राम नवमी सेलिब्रेट किया, उस पर कुछ चर्चाएं की। उससे पहले इंडियन न्यू ईयर, भारतीय नववर्ष पर भी हमने चर्चा की। बीच बीच में ये फेस्टिवल्स आते रहेंगे और गीता की अपनी कंटिन्यूटी रहेगी। तो मेरे साथ मिलकर के बोलिए, शरीर वांग मनो भीर्यत, खुलकर बोलिए, कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। तो अर्जुन, व्हाट एवर एक्शंस इज अंडरटेकन विद दिस बॉडी और स्पीच और माइंड इन ऑल द थ्री लेवल्स, एंड वेदर इट इज राइट और रॉन्ग ऑफ इट, दीज फाइव आर द कॉजेस। तो पिछले जो इससे पहले की चर्चा में जो लोग थे उन्होंने सुना कि जो कुछ भी हम करते हैं और उसमें जो भी हम सक्सेस होते हैं या फेल होते हैं या जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो पूरा होता है या नहीं होता है, जो भी काम हम करते हैं, तो वो पांच फैक्टर होते हैं जो डिसाइसिव होते हैं। उसमें सिर्फ मैं अकेला फैक्टर नहीं होता हूं या मेरा हार्ड वर्किंग सिर्फ फैक्टर नहीं होता है, और भी बहुत सारे चीजें होती हैं। जैसे हमने सुना, टाइम, पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, हमारी अपनी एबिलिटी, कर्ता करणम, जो वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, हेल्पिंग हैंड्स, किसका हम हेल्प ले रहे हैं, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। चौथा बताया एफर्ट्स, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो क्वांटिटी है। जब क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिर ये वेरियस हो जाता है। फिर लास्ट में पांचवा है कि हमारा जो पुराना कर्म, जो पास्ट कर्म हमने किया था और जो हमारे बॉडी को, माइंड को, इंटेलेक्ट को मोल्ड करते रहते हैं अननोइंगली, हमें पता ही नहीं चलता, और जो बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होते हैं, हमारे पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम ऐसा नहीं हो पाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर से कुछ सबकॉन्शियसली कोई हमें जबरदस्ती अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है या पॉजिटिव उस डायरेक्शन में खींचता है, क्योंकि हमारे अपने कुछ पुराने कर्म या एक्सपीरियंस हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में मेमोरी बन के होते हैं। तो ये जो पांच फैक्टर हमें हमारे काम के रिजल्ट देने में कारण बनते हैं, वो सब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोई अच्छा काम करते हैं तभी रिजल्ट, नहीं, आप हम गलत करते हैं या सही करते हैं, कैसा भी काम करते हैं, सेल्फिश होकर करते हैं या सेल्फलेस होकर करते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो सक्सेसफुल हैं लाइफ में या जो फेल हैं, जरूरी नहीं कि जो सक्सेसफुल हैं वो बड़े सेल्फिश थे या सेल्फलेस थे। इवन जो बुरा काम करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सेल्फिश थे या सेल्फलेस, उनमें बहुत सेल्फलेस भी हो सकते हैं, वो अलग चीज है। पर मैं जो कुछ कर रहा हूं, किसी भी तरीके से कर रहा हूं, उसका रिजल्ट क्या होगा वो और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और दूसरा, मैं फिजिकली कुछ काम करता हूं या मेंटली करता हूं या ओरली करता हूं, ये भी हमने लास्ट डिस्कशन में ये बात उठी थी कि जनरली जो हम आम तौर पर जो हम ऑब्जर्व करते हैं या जो हमारा परसेप्शन है वो ये है, इवन हम खुद को जब असेस करते हैं या दूसरों को असेस करते हैं, हम उनके कामों से करते हैं, और काम हम जनरली फिजिकल काम को ही काम समझते हैं। पर वो कहता है नहीं, आप फिजिकली जो करते हो, क्योंकि वो दिखता है, आपको भी दिखता है और पब्लिक को भी दिखता है, इसीलिए आप सिर्फ इसी को काउंट करते हो। तो आप फिजिकली जो कुछ करते हो वो भी उतने ही कारण होते हैं जितना आप वाणी से बोलते हो। आप फिजिकली किसी को मार सकते हो, मतलब खून कर सकते हो, और अली भी कर सकते हो, बोल के भी मार सकते हो। आप फिजिकली किसी को हर्ट कर सकते हो, वाणी से भी हम करते हैं। हम फिजिकली किसी का भला कर सकते हैं, वाणी से भी करते हैं। तो वाणी का भी, जो हम बोलते हैं उसका भी उतना ही रोल होता है, बहुत सारे मैटरों में ज्यादा रोल होता है। और आजकल के जिस तरह के सोसाइटी बन रही है, जहां ज्यादा फिजिकल अब्यूस में बहुत कम है, खास करके हम एक्सपेक्ट करते हैं पढ़े लिखे लोगों के घर में अब वो फिजिकल अब्यूसिंग कम हो रहा हो, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। किसी के घर में अभी हो रहा हो तो अलग बात है, पर स्ट्रेस अभी भी है। क्यों? क्योंकि वाणी तो जहर से भी बदतर निकलती है, तलवार से भी खतरनाक वाणी निकल जाती है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके बोलने से अमृत निकलता है, मन ठंडा पड़ जाता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो मतलब आप वाणी से भी लोगों का उपचार करते हैं, बीमार आदमी को भी आप ठीक करते हैं, और ठीक ठाक आदमी को भी बीमार कर दे, एक हफ्ते तक बेड से उठता ही नहीं है क्योंकि बीपी इतना हाई हो गया, इतना स्ट्रेस में चला गया आपने ऐसा बोला। तो वाणी को कभी कम नहीं आंकना, ना दूसरों के ना खुद के, इसका भी रोल होता है हमारी लाइफ में। और तीसरा, जिसको हम बहुत ही इग्नोर करते हैं, हम समझते हैं इसका कोई रोल नहीं है, वो है माइंड, इंटेलेक्ट, थॉट लेवल पर जो हम काम करते हैं। मतलब हो सकता है मैं ना सोचूं कि मैं ऐसा ना करूं कि मैं आपको मार रहा हूं फिजिकली, पर मन में चल रहा है कि इसको मौका मिले तो मार देता। अगर पुलिस की प्रॉब्लम नहीं होता, सरकार ऐसा नहीं होता, मुझे कोई चिंता नहीं होती, ये जस्टिस सिस्टम की कोर्ट पकड़ लेगी, पुलिस आ जाएगी, पता नहीं मैं क्या कर डालता। हम सब अगर सोसाइटी बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए, मतलब थोड़ा जंगल राज जैसा माहौल बन जाए, जहां पुलिस ना हो, कोर्ट ना हो, कोई डर ना हो, तो देखिए ये 100 में से कम 50% तो होंगे जो बहुत ही नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जो मन में जो विचार है ना, सब फिर करने को आ जाए, वो जंगल राज बन जाए। मतलब मन में भी हमारा बहुत कुछ चल रहा होता है, और उसका इसका अर्थ नहीं कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। मैं और आप, सारी दुनिया जैसा भी है, मेरी जैसी भी पर्सनालिटी है और आपकी जो भी पर्सनालिटी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। मैं क्या मानता हूं, क्या नहीं मानता हूं, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है या क्या नहीं है, मैं किस चीज को अच्छा मानता हूं या बुरा मानता हूं, और किस लेवल तक मैं मानता हूं सही है, किस लेवल तक मैं मानता हूं गलत है, ये सब डिसाइसिव फैक्टर होते हैं मेरी पर्सनालिटी कैसी है। तो इसीलिए ये तीनों लेवल पर हम काम करते हैं। इसीलिए सिर्फ अपने शरीर से किया जाने वाले काम को काम मत समझिए, जो वाणी से बोलते हैं वो भी उतना ही पावरफुल होता है, और आपके थॉट लेवल पर भी जो चलता है वो भी उतना ही पावरफुल होता है। हो सकता है आपके थॉट लेवल पर जो चलता है अभी आप उसका पब्लिक में कुछ उसका इंप्लीमेंट नहीं करते हो, पर धीरे धीरे अननोइंगली आपकी बैकग्राउंड में वो आपको चेंज करता रहता है, करता रहता है। थर्ड प्रोसेस जब स्ट्रांग होता जाता है, कि जो आज जिनको आप टेररिस्ट देखते हैं या जो क्रिमिनल्स देखते हैं, वो एक दिन में नहीं बनते, और वो फिजिकल आज बने, कहीं चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, लोगों को मारते हैं, टेरराइज करते हैं, वो आज करते हैं जो आपको दिखता है, पर उसका बीज उनके पर्सनालिटी में 15 साल 20 साल पहले बोया जा रहा था, जब उनको हर बुरा काम करने पर प्रशंसा किया जाता था, उनको ये बताया जाता था कि बुरा काम करना कितना अच्छा होता है, स्वर्ग में स्थान मिलता है, वगैरह वगैरह। बुरा काम करने से कोई नुकसान नहीं होता है। ये जो ट्रेनिंग है ये किस चीज की ट्रेनिंग है? माइंड की ट्रेनिंग है। इसी को आप अपब्रिंगिंग भी बोलते हो। वो अपब्रिंगिंग अपने माँ बाप दे, पड़ोसी दे, कोई पीयर सर्कल जहां फ्रेंड सर्कल दे, या बड़े होने के बाद और कहीं से ट्रेनिंग मिले। वो ट्रेनिंग किस चीज की होती है? बॉडी की नहीं, माइंड की होती है। दिव्यों सज्जनों ध्यान रखिएगा, आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है या पुलिस में, हम सोचते हैं बस वहां सिर्फ दंड बैठक लगाते हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं फिजिकली उनको, नहीं। जितना आपको दिखता है फिजिकली जो वो ट्रेंड होते हैं, वो आर्मी मैन हो, पुलिस मैन हो, जो भी सिक्योरिटी फोर्स में है, उससे ज्यादा ट्रेनिंग उनको इंडोर होता है। नहीं तो कौन सा आदमी ऐसा भला है जो मरने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी कारण के लिए, देश के लिए हो, समाज के लिए हो, कौन तैयार होता है मरने के लिए भाई? और आप करोड़ों की फौज खड़ा कर देते हो एक कमांड पर, वो तैयार हो जाते हैं मरने के लिए। जब आप लड़ाई के मैदान में होते हो, मारने के लिए थोड़े ही सिर्फ होते हो, आपकी ट्रेनिंग होती है मरने के लिए, तब आप मार सकते हो। कौन तैयार हो जाएगा जी इतनी आसानी से कि मैं मर जाऊं? आसान नहीं होता, पर वो ट्रेंड होते हैं। वो ट्रेनिंग किसकी होती है? माइंड की होती है, थॉट प्रोसेस की होती है। तो इसीलिए बहुत पावरफुल होता है। तो हमारी पर्सनालिटी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट कोई है, वो है हमारा विचार। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि हमेशा अच्छा चीजें, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजों के ऊपर सोचो, विचार करो, नेगेटिव चीजों उसको अवॉइड करो, और उनके बारे में थॉट प्रोसेस आता है तो उसको कंट्रोल, जितना जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाने के लिए कोई नया अच्छा विचार लाने की कोशिश करो। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं लाते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं, ये हमारे पर्सनालिटी को भी धीरे 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 ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसलिए कहा ये तीनों काम होता है, मेंटल लेवल पर, ओरल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, और उसमें जो सक्सेस या फेलोर है वो सब ये पांच फैक्टर से होता है। अगला श्लोक देखिए, तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः। नाउ सच बीइंग द केस मीन्स, जब ये आपको मुझे पता चला कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी मैं करता हूं मेंटली, फिजिकली और ओरली, उसका रिजल्ट सिर्फ मेरे करने से नहीं मिलता, मेरी एबिलिटी से नहीं मिलता, या मेरे हार्ड वर्क से नहीं मिलता, और भी अलग अलग फैक्टर होते हैं, पांच फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। अगर ये फुल प्रूफ्ड हो गया, हमें पता लग गया, देन हुसोएवर व्यूज हिमसेल्फ एज द सोल एजेंट कॉज ऑफ द एक्शंस ड्यू टू इट्स इम्परफेक्ट नॉलेज। इसलिए कोई भी सोचता हो जो कुछ मेरे द्वारा किया गया, जो मेरे लाइफ में सक्सेस हुआ, इवन फेलोर हुआ, अगर मैं किसी चीज में फेल हुआ हूं, बहुत दो तरह के, तीन तरह के लोग होते हैं जी। एक तो वो लोग होते हैं जो सक्सेस में खुद क्रेडिट ले लेते हैं, फेल होने पर दूसरों को क्रेडिट दे देते हैं, है ना, नहीं, सब दूसरों की प्रॉब्लम है। यहां हमने देखा बड़े बड़े बच्चे हैं, अपने 35-40 साल के बच्चे काम नहीं ठीक से कर पाते हैं, फेल हो गए, अब माँ बाप को क्या बोलते हैं? तुम्हारे कारण है जी, क्यों? बचपन में तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, मारा था, डांटा था, मुझे वो कर दिया, इसीलिए। भाई बचपन, सारे इंडियन बच्चे तो भारत में मार खा 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 कर बढ़ते हैं, थोड़े उनका दब जाता है, ऐसा थोड़े होता है। एक्सक्यूज है और कुछ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्सक्यूज ढूंढना है फेलियर के लिए। ये तुम कुछ नहीं मिला माँ बाप, या तो भगत से आखिर में किस्मत तो होता ही होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने सक्सेस और फेलियर दूसरे पर डाल देते हैं, मैं कहीं भी नहीं हूं। तीसरे टाइप के लोग जो दोनों को अपने ऊपर ले जाते हैं, पर एक ये श्लोक बताना चाहता है, हमारे लाइफ में जो भी सक्सेस या फेलर होता है उसमें तुम अकेले कारण नहीं हो। और जो ऐसा समझता है कि मैं ही, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं होता तो नहीं होता, मैं ये नहीं करता तो नहीं होता, वो अकृत बुद्धि है, थोड़ा इम्परफेक्ट इंटेलेक्ट वाला व्यक्ति है, दिमाग थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है, समझदारी नहीं है। द डिफेक्टेड माइंडेड वन, गीता उसको कहता है, उसका माइंड थोड़ा डिफेक्टेड है। किसका? जो हर चीज में सोचता है मेरे कारण हुआ, मैं ही कारण हूं, मैं ही करता हूं, और डजंट व्यू थिंग्स राइटली, चीजों को एज इट इज समझ नहीं पाता है। ईगो कारण नहीं है। श्लोक में यह नहीं बोला कि वो बड़ा इगोइस्टिक है, रोगेंट है, हर चीज में क्रेडिट खुद ले जाता है, ऐसा नहीं बोला। बोला डिफेक्टेड माइंड वाला है। बोला ट्रेनिंग की जरूरत है, डिफेक्टेड है, उसको फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, आप रोड पर अगर गाड़ी चलाते हैं, बार बार हम एग्जाम्पल देते हैं, आप कितनी बढ़िया ढंग से सारे रूल्स को फॉलो करके भी चलाओ, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी गाड़ी के साथ कोई हिट नहीं करेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। और आप सारी गड़बड़ियां करने के बाद भी, कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ एक्सीडेंट हो ही जाएगा। छोटी सी एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में। जरूरी नहीं कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे स्कूल में, कॉलेज में आप थोड़ा मस्ती में ज्यादा रहते थे, पढ़ाई लिखाई ढीला करते थे, तो आगे जाकर के आप बहुत ही बेकार हो जाएंगे, दूसरों से कमजोर हो जाएंगे। और सच कहें सोसाइटी में तो हम इसका उल्टा देखते हैं, जितने बड़े बड़े मालिक हैं, ओनर्स हैं, और उनके अंडर काम करने वाले जितने प्रोफेशनल्स हैं, वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, सब एजुकेटेड हैं, वेल टैलेंटेड हैं, ब्रिलियंट है। काम किसके नीचे करते हैं? जिसके नीचे करते हैं वो उनसे पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत इन्फीरियर होता है। ऐसा मत सोचिए कि कम पढ़ा लिखा आदमी आगे जाकर सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें काम करता है लाइफ में हमारे सफलता होने में और असफल होने में। ये समझने के साथ जब हम चले तो वो कहता है कि वो सही दृष्टि है। दूसरी चीज देखिए, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान नहंति न नवध्यते। सॉरी, जिसका कोई इगोइस्टिक नोशन नहीं है, इगोइस्टिक नोशन का सिंपल मीनिंग है आई भाव कम है, हुज इंटेलिजेंस इज नॉट टेंटेड, जिसका अभी जो बताया डिफेक्टेड माइंड जो नहीं है, वह अच्छा स्वस्थ मन है, हेल्दी माइंड है, तो ऐसा व्यक्ति अगर मारता भी किसी को है ना, तो भी ना वो उसको मारता है, ना उसके साथ वो कोई बाइंड होता है। ये इसका अर्थ ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया, गीता में बोला किसी को मार दो, क्योंकि मारने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो गीता पढ़ के आया जी अभी कि अगर आप अहंकार भाव ना रखो, जी मेरे में कोई अहंकार नहीं, मैं नहीं मार रहा हूं, मेरा हाथ मार रहा है तो मैंने तुम्हें मार दिया, बोले गीता पढ़ के आया, ऐसा नहीं है। आप उस सोल्जर की माइंडसेट को समझिए, उस पुलिस अफसर की माइंडसेट को समझिए, उस जज की जो हिंसा करते हैं, पर आप कभी नहीं सोचते हो, आपके दिमाग में कभी नहीं आता है कि ये गलत लोग हैं, पापी हैं, हिंसा करते हैं। जब कोई जज डिसीजन सुनाता है कि इसको जेल में डालो, इसको फांसी में डालो, इसको लेथल इंजेक्शन दो, इसको ये करो, हत्या तो वो भी करता है ना, उसको खुद ये फीलिंग होता है, अगर वो टेंटेड माइंड वाला ना हो तो उसको ये फील नहीं होगा कि ये मैं कुछ पाप कर रहा हूं, क्योंकि उसका अपोजिट वो पुण्य भी नहीं कर रहा होता है। वो सोल्जर जब मैदान में अपने कमांडर के ऑर्डर पर लड़ाई करने खड़ा होता है, अगर अभी वार टाइम नहीं है, पीस टाइम है, वो अपने पड़ोसी देश के सैनिकों के साथ बॉर्डर में बैठ के मिठाई शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, गपशप करते हैं, इवन भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी आपको मिलेगा। और अभी सायरन बजा, कमांडर का ऑर्डर हुआ कि सामने जो है एनिमी है और उनको मारो, वो उसी समय मारता है। इसीलिए नहीं मारा, उससे उसे नफरत है, वो उसे मारना चाहता है, या उसको गुस्सा है, या उसको लालच है, या उसको और किसी तरह का इल्यूशन है, नहीं, उसकी ड्यूटी है, वो ट्रेंड है इसी के लिए। उसके मन में किसी को मारने ना मारने का कोई भाव नहीं है, उसको अपनी ड्यूटी निभाना है। पर वही सोल्जर, वही सैनिक जब अपने गांव में आता है, घर में आता है, किसी को थप्पड़ भी मारता है, उसको खुद को भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, पुलिस भी पकड़ के ले जाती है थाने में, और उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकता है, केस भी चलता है और उसको सजा भी मिलती है, थप्पड़ मार दिया, क्योंकि यहां उसका अपना इंटरेस्ट है, उसका कोई लालच है, कोई गुस्सा है, कोई और रीजन है, जहां उसका सेल्फ इंटरेस्ट है जिसके कारण वो करता है, वहां वो कर्तव्य भाव से करता है, वहां पूरी तरह वो योगिक स्थिति में होता है, मारने मरने पर उसको कोई ना सुख है ना दुख है, सैनिकों को मारा हुआ देखकर दुश्मनों के उसको कोई सुख नहीं होता, ना मारने पर दुख होता है, उसको अपनी ड्यूटी निभानी होती है। हो सकता है लड़ाई खत्म होने पर उसको वो फीलिंग, गिल्टी फीलिंग हो, अगर थोड़ा सा माइंड उसका डिफेक्टेड हो, ट्रेनिंग प्रॉपरली ना हो, मैंने इतने लोगों को मारा, जैसे अर्जुन को लड़ाई से पहले हुआ। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने पहले लड़ाई नहीं की थी, सैकड़ों लड़ाइयां की थी, मारी थी, पर आज लड़ाई के मैदान पर सामने चाचा है, भतीजा है, ग्रांडपा है, मामा है, ससुर हैं, इनलॉज हैं, हर तरह के रिलेटिव्स हैं, इधर भी है और सामने भी हैं। नेचुरली आम इंसान की तरह अब वो टेंटेड माइंड वाला, अब वो समझदारी से नहीं, इमोशन से बात को समझने लगा। जब इमोशन हावी हो जाता है तो फिर आप सही गलत की जगह फिर कुछ अलग फीलिंग करने लगते हैं। तभी पूरी गीता की चर्चा हुई। इसी तरह जब व्यक्ति उस स्टेज पर पहुंच जाए कि मैं अकेला फैक्टर नहीं हूं, ये दुनिया कैसे फंक्शन करता है, ये काम कैसे होता है, काम का रिजल्ट कैसे मिलता है, जब आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, कन्विक्शन क्लियर हो, मैं क्या हूं, मेरा ओवरऑल आइडेंटिटी क्या है, जब सब कुछ आपकी क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, फिर इवन आपके द्वारा किसी का हत्या भी हो जाए तो भी आप उस हत्या के भागीदार नहीं बनते। इसका अपोजिट भी है, आप किसी का भला भी आपके द्वारा हो जाए तो आप उसके भागीदार नहीं बनते। ऐसा नहीं कि सिर्फ हत्या करने की बात है, ये एग्जाम्पल है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन से समझा रहे हैं और अर्जुन लड़ाई के मैदान में, इसीलिए कि हत्या की बात आई। ऐसा नहीं कि मेरे और आपके किसी भी सिविल पर्सन के लिए बात नहीं थी, अर्जुन की प्रोफेशन के, अर्जुन अगर लड़ाई के मैदान में ना पूछ के घर में मियां बीबी की लड़ाई के बीच में पूछता तो कृष्ण उसको कुछ दूसरे ढंग से एग्जाम्पल देते। इट्स ऑल अबाउट लाइफ के जितने भी डायमेंशन है आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगला श्लोक लेते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। जो भी काम हम करते हैं उसके बैकग्राउंड में जो इंपल्शन है, जो प्रेरणा है, जो हमें उसको करने के लिए मोटिवेट करता है, वो हमारा तीन चीज होता है, हमारा नॉलेज, और उस नॉलेज का जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने जाना, और वो जानने वाला व्यक्ति। पहले इसको समझते हैं, फिर सेकंड लाइन को बाद में समझेंगे। आपने जाना, पढ़ा कि स्पेस में लोग गए, हमारे इंडियन लोग ने पढ़ा कल्पना चावला गई, सुनीता विलियम्स गई, कैसे गया डिटेल में पढ़े, क्या क्या उन्होंने तैयारियां की पढ़ी, अच्छा लगा, ज्ञान हुआ। जब आपको ज्ञान होता है वो ज्ञान फिर आपको मोटिवेट करता है कि आगे मैं करूं या ना करूं। ऑब्जेक्ट जो ज्ञान का जो ऑब्जेक्ट क्या था, आपने वो स्पेस वॉकर के बारे में पढ़ा, ये जो ज्ञान हुआ और ज्ञान का जो ऑब्जेक्ट है और जानने वाला, ये तीनों चीजें डिसाइड करते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैंने जाना, स्पेस जाना कितना एडवेंचरियस है, जो गए कितना आइडियल है, और हमारे दिल में कितना रिस्पेक्ट होता है, मन करता है हम भी जाएं, पर हम नहीं जाते हैं। जाने के हम कोशिश भी नहीं करते, इच्छा भी नहीं होती है। क्यों? अपनी अपनी एबिलिटी है। अगर 10 करोड़ लोगों ने जाना, 100 लोगों का इंटरेस्ट हुआ, हम भी जाएंगे, तैयारियां करते हैं, जाते नहीं जाते हैं अलग बात है। ज्ञान सबको हुआ, ज्ञान का ऑब्जेक्ट सबको था, पर ज्ञाता अलग अलग थे। सही ज्ञान भी हो, ऑब्जेक्ट भी सही हो, ज्ञाता अलग होने पर उसके उसका जो मोटिवेशन अलग होता है। कोई स्पेस तक जाना चाहता है, बहुत लोग सपना भी नहीं देखते हैं कि मैं स्पेस जाऊंगा, पढ़ा जानता हूं, घंटों बता सकता हूं, पर कभी ड्रीम में भी नहीं आया कि मैं भी जाऊं स्पेस में। हां, किसी को ड्रीम में आया कि मैं यूएसए जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, पर यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं आता है ड्रीम में। पढ़ा अमेरिका ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, ब्रिटेन ऐसा है, जापान ऐसा है, बहुत लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं। अमेरिकन एम्बेसी में रोज भारत में 10 से 20 लाख लोग लाइन में लगते हैं, और उसमें कुछ 100 चुने जाते हैं, सबको पता है। पर आपको लगता होगा कि पूरा सारा देश उमड़ रहा होगा, नहीं, ड्रीम भी नहीं देखते हैं। दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद का ड्रीम देखते हैं। ज्ञान है, ऑब्जेक्ट है, पर ड्रीम भी नहीं है अभी भी कि हम देश से बाहर जाए, बड़े शहर में जाए। और यकीन मानिए करोड़ों लोग हैं जो वो सपना भी नहीं देखते कि हम दिल्ली पहुंच जाए, बॉम्बे पहुंच जाए, हैदराबाद बेंगलुरु पहुंच जाए। मैं भारत की बात करता हूं, अपने अपने स्टेट कैपिटल भी की सपना भी देख ले, बड़ी बात है। चंडीगढ़ तक पहुंच जाऊं अगर पंजाब हरियाणा का है, बिहार का है तो पटना में पहुंच जाऊं, यूपी का है लखनऊ में पहुंच जाऊं, आंध्र का है हैदराबाद में पहुंच जाऊं, बड़ी बात है और खुश है। उससे ज्यादा सपना ही नहीं देखते। ज्ञान है, उसका ऑब्जेक्ट भी है, मोटिवेशन उतना ही है। और यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इनको सब पता है, पर अपने गांव से बाहर भी नहीं जाना चाहते, इवन वो स्मॉल टाउन भी नहीं जाना चाहते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि ज्ञान हो जाने पर, ऑब्जेक्ट के पता लग जाने पर हर व्यक्ति एक जैसा रिएक्ट करेगा? नहीं। ह्यूस्टन में हार्वी आई, फ्लड आया, लोगों ने घर में, बहुत सारे लोगों ने घर में आठ आठ घंटे, दस दस घंटे, बारह बारह घंटे टीवी में देखा, एक एक छोटी छोटी न्यूज की बारीकी से देखा, ज्ञान हुआ, ज्ञान का ऑब्जेक्ट भी क्लियर था, ह्यूस्टन में कहां क्या हो रहा है, पर अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपने घर बचाने के लिए भी नहीं निकले। कुछ लोग हैं जो निकले, आसपास की हेल्प करने के लिए निकले, कुछ लोग हैं निकले दूर दूर तक, कम्युनिटी तक गए, और मजे की बात है कुछ लोग तो दूसरे शहरों से आए जहां हुआ नहीं था, और कोई फ्लाइट लेकर के नहीं, इतने पैसे वाले नहीं है, अपनी जस्ट जो भी गाड़ी थी पकड़े, 24 घंटे 36 घंटे 18 घंटे की ड्राइव करके ह्यूस्टन पहुंच गए। ये नहीं पता है कहां जाना है, किसको हेल्प करना है, पहुंच गए, क्या ही भी पहुंच गए, पूछताछ करके हेल्प करना है, नॉलेज सबको हुआ, नॉलेज का ऑब्जेक्ट भी सबको पता था, पर ज्ञाता जो नोअर है उनकी अपनी एबिलिटी, उनकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड, किसी भी लेवल पर जो मोटिवेशन हुआ क्या करना है, वो सबका अलग अलग था। कोई अपने को भी नहीं बचाया, कोई सिर्फ पड़ोसी तक गया, कोई दूर तक गया। अब बहुत सारे लोग हमें पता चला जिनके अपने घर डूबे हुए थे, पर वो महीनों तक, और आज तक भी कुछ लोगों को हम जानते हैं, वो आज तक भी काम करते हैं, जिनके घर टूटे हैं, गरीब हैं, रिफ्यूजी लोग हैं, उनके घर बनाने में काम करते हैं, और उनके खुद के घर डूबे हुए थे तब भी वो बाहर थे। और सबसे मजेदार बात, बाहर से लोग आते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग, सिर्फ पता है कि ह्यूस्टन में फ्लड आया, लाखों करोड़ों लोगों के घर टूट गया, डूब गया, परेशान है, दुखी है, अपना जो भी फटा पुराना नया गाड़ी पकड़े चल पड़े, जो भी इंस्ट्रूमेंट है पहुंच गए, ना खुद के रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, पहुंच गए। इसका मतलब क्या है? केवल ज्ञान हो जाने से, जानकारी मिल जाने से सारे लोग एक जैसा नहीं हो जाते। ज्ञान अलग अलग होता है, ज्ञान के ऑब्जेक्ट भी सबको अलग अलग मिलता है, और दोनों अगर सही भी मिल जाए तो भी ज्ञाता, जानने वाला जो नोअर है, उसकी अलग अलग तरह के लोक होने से उनका जो मोटिवेशन है आगे में इसको करूं ना करूं, वो भी अलग अलग लेवल का होता है। सामने सांप पड़ जाए, आप चल रहे हैं, दस लोग चल रहे हैं, सांप का ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, आप नॉलेजेबल हुए। एक तो सांप जा रहा है, आपको पता नहीं चला, आपको नॉलेज नहीं हुआ, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, पर आपको नॉलेज भी हुआ और नॉलेज का ऑब्जेक्ट भी पता चला सांप। कभी कभी रस्सी देखकर भी हम सांप समझ बैठते हैं, रात को अंधेरे में ऑब्जेक्ट भी पता चला सांप। पर मजेदार बात है कि अगर 10 लोगों ने देखा, 10 का अलग अलग रिएक्शन हुआ, कोई दौड़ के भागा, कोई चिल्लाया, और कोई डंडा ढूंढा मारने के लिए, और कोई खाली हाथ में सांप को पकड़ने की कोशिश की, तो सबका अलग अलग रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि हम सबकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इन द सेंस सिर्फ फैमिली या स्कूल कॉलेज की नहीं, पैदा होना और पैदा होने से पहले से जो एक्सपीरियंस है, जो रियलाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं संस्कार, सबकॉन्शियस मेमोरी है, वो सबकी अलग अलग होती है। और ये डिसाइसिव फैक्टर कहां से आ रहा है देवियों सज्जनों? फिजिकली नहीं, इस सब मेंटली। तो हम जो कुछ भी हैं, हमारा मानसिक स्थिति कैसा है, वो रिएक्ट होता है फिजिकली। इसलिए ज्ञान, ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और ज्ञाता, ये तीनों मोटिवेशन के कारण बनते हैं। रसगुल्ला रखा है, मैं नेक्स्ट टाइम खाऊं, 10 लोगों ने खाया, पर नेक्स्ट टाइम 10 लोग खाएंगे नहीं खाएंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सबका रिएक्शन अलग अलग होगा। अगला है जो नेक्स्ट टाइम डिटेल में चर्चा करेंगे। चले, आपका मोटिवेशन बना, आपने कुछ देखा सुना जाना, नॉलेज हुआ, पक्का नॉलेज हुआ, और करना या ना करने का एक मोटिवेशन बनना कि मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, फ्लड अफेक्टेड लोगों को हेल्प करूंगा या नहीं करूंगा, स्पेस में वॉक करूंगा या अपने छोटे से गांव के बाहर जाऊंगा। जो भी डिसीजन लिया उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज कॉल्ड कर्म। वो कर्म भी तीन, और कर्मों के तीन फैक्टर होते हैं, करणम आपकी जो हेल्पिंग हैंड है, जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, कर्म जो आपका एफर्ट है, नेचुरली कर्ता जो करने वाला है। इन तीनों की क्या क्या कितने लेयर्स हैं, उस कितने अलग अलग लेयर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट भी कितने अलग अलग होगा। इसके बारे में डिटेल में फिर हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।